بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اس سورت کا نام سورت البینات ہے. بینہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی دلیل اور نشانی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ایک بہت بڑا دین کا معجزہ چمتکار. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے اس کے بعد یہ سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اس سورت کا ایک عجیب قصہ ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بہت بڑے قاری تھے. کہتے ہیں کہ پوری امت محمدیہ میں یہ سب سے بڑے قاری کہلاتے ہیں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا, کتنا پیارا پڑھتے ہوں گے. ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ سورہ بینہ پڑھ کر کے سناؤ. تو حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے آپ کو فرمایا؟ ایک تو یہ ہے کہ جنرل بات ہو جاتی کہ کوئی بھی کہا بھی. تو حضرت عبید بن کعب نے پوچھا کہ کیا میرا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کے فرمایا. تو اس پر حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا. رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے کہ کتنی میری خوش نصیبی ہے کہ میرا نام میرے اللہ کے دربار میں لیا گیا اور میرے اللہ نے میرے لیے اپنے پاک نبی کو حکم دیا. یہ کتنے اونچے درجے کے قاری ہیں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو مقتدی و حاضر امت کہا جاتا ہے, یعنی اس امت کے سب سے بڑے قاری صاحب. اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی لوگ اور مشرکین یعنی کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے کفر کو چھوڑنے والے نہیں تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے کے اندر دنیا کے اندر کفر اور شرک کا عام ہو چکا ہے. सही दीन, असली दीन, उसको जानने वाले, उसको सीखने और सिखाने वाले बहुत थोड़े थोड़े लोग दुनिया के अंदर है। बाकी आम पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क की गंदगी में पड़ी हुई है। अरबस्तान के अंदर जो मुशरिक लोग बुद्ध की पूजा करने वाले हैं, वो तो सही बुद्ध परस्त है, लेकिन ये दो कौम, एक यहूदी और एक नसरानी, सारे लोग अल्लाह ताला ने इन दोनों कौमों को बहुत बड़ी बड़ी दीनी नेमतों से नवाजा था। यहूदियों को अल्लाह ने तौरात जैसी मुबारक किताब दी थी, जैसे हमको कुरान दिया, यहूदियों को अल्लाह ने तौरात जैसी किताब दी थी। नसरानियों को, ईसाइयों को अल्लाह ताला ने इंजील जैसी मुबारक किताब अता फरमाई। जैसे हमारे हुजूर हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरीके से यहूदियों को अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहि सलाम जैसे पैगंबर अता फरमाए, और मूसा अलैहि सलाम के बाद तकरीबन 70,000 नबी अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाए। इन बनी इस्राइल खानदान है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, इसी एक खानदान में 70,000 नबी अल्लाह ने पैदा फरमाए। और नसरानी लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम देके उनको नबी अता फरमाए। तो ये दोनों कौमों के पास, यहूदियों के पास तौरात किताब और मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी, ईसाई लोगों के पास इंजील किताब और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह के नबी। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने अल्लाह की मुबारक किताब पर अमल करना छोड़ दिया था। खुद यहूदी लोग भी कुफ्र करने लगे थे और ईसाई लोग भी कुफ्र करने लगते थे, और इनका कुफ्र भी बड़ा खतरनाक देखता था। यहूदी लोग कहते थे कि अल्लाह के एक नबी है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। और किसी को भी अल्लाह का बेटा मानना ये बहुत बड़ी कुफ्र की बात है, और उसी चीज को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, यहूद कहने लगे तुझे अल्लाह के बेटे, ईसाई कहने लगे ईसा अल्लाह के बेटे, ये भी कुफ्र में लगते हैं। और फिर एक बड़ा कुफ्र उन लोगों ने ये किया कि तीन खुदा मानते रहे, कहने लगे कि एक खुदा नहीं खुदा तीन है, कौन का एक अल्लाह, दूसरे हजरत ईसा, तीसरे उनकी अम्मा मरियम, और कुछ लोग कहते थे कि तीसरे खुदा जिब्रील अमीन। ये तीन खुदा ये लोग मानने लगे थे और ऐसा कुफ्र करने ये लोग लगते, और तौरात और इंजील जैसी मुबारक किताब, लेकिन उस किताब के अंदर सारी हेरा फेरी कर डाली, सब बदली कर डाली, अपनी तरफ से रब को बदल कर डाली। अल्लाह की किताब में लिखा कुछ होता और वो उसको मिटा करके वहां दूसरी बात अपनी मर्जी से लिख देते। ये तो अल्लाह का एहसान, कि अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी दी है, खुद अल्लाह की जिम्मेदारी है कि कयामत तक ये कुरान हिफाजत से रहेगा। बाकी इंजील तौरात ये सब अल्लाह की किताब, लेकिन अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उन लोगों को दे दी, यहूदियों को, नसरानियों को, तुम संभालो। लेकिन उन्होंने संभाला नहीं और अंदर मिलावट कर डाली अल्लाह की किताब में। तो तीनों बड़ी बड़ी कौम दुनिया में उस वक्त तीन बड़ी कौम थी, एक यहूदी वो भी कुफ्र में लग गए, शिर्क में लग गए, दूसरी ईसाई वो भी कुफ्र में लग गए, और मक्का और अरब के मुशरिकीन वो तो कुफ्र में ही थे पहले। ये तीनों कौम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते इनका कुफ्र इनका शिर्क इतना पक्का हो चुका था कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई बड़ी निशानी कुदरत की नहीं आवे वहां तक ये लोग हिदायत पर आने वाले नहीं हुए। लेकिन अल्लाह ताला ने करम फरमाया और जितना खतरनाक उनका कुफ्र था, जैसे डेंजर वो काफिर थे, अल्लाह ताला ने इतने ही बड़े नबी को उनके लिए भेजा। हमारे यहाँ भी कायदा है, जितनी बड़ी बीमारी उतने बड़े डॉक्टर को तलाश कर, जितना बड़ा बीमार उतना बड़ा डॉक्टर। तो इनकी बीमारी कुफ्र की इतनी खतरनाक हो गई थी कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़े नबी को उनके लिए भेजा और वो नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं को अल्लाह ने तैयना फरमाया कि हमारे इतने मजबूत इतने ताकत वाले इतने पावर वाले इतनी बड़ी नूरानियत वाले इतनी बड़ी रूहानियत वाले इतने बड़े इल्म वाले इतनी बड़ी बुजुर्गी वाले इतने सारे कमालात और सिफात वाले हमने नबी को उनके लिए भेजा दिया। उस नबी का हाल क्या था? ये वही था अल्लाह के रसूल जो अल्लाह की तरफ से आए और पाकीज़ा सहीफ़े पाकीज़ा किताबें उनको पढ़ पढ़ करके सुनाते थे। चुनाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के उनको ये पाकीज़ा कुरान सुनाना शुरू किया, पाक नूरानी किताब सुनानी शुरू करवाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे और कुरान की नूरानियत कुरान की बरकत उनके दिलों के ऊपर असर करने लगी। बड़े बड़े खतरनाक काफिर जो लड़ने मरने वाले जिनकी जिंदगी लड़ने मरने में गुजरती थी, ये कुरान सुनते थे और ईमान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के उनको सुनाते और वो कुरान को सुनते और सुन करके अल्लाह की मुबारक किताब के ऊपर ईमान लिया। कि कितना पाक कुरान, कितना पाकीज़ा कुरान, कितना नूरानी कुरान, जो उसको पढ़े वो भी पाकीज़ा बन जाए। ये खुद पाकीज़ा है, पाक है, जो उसको पढ़ेगा वो भी पाक और नूरानी बन जाएगा। अल्लाह ने इस किताब के अंदर वो भी और कमाल इसीलिए इसको पढ़ने के लिए भी पाक होना चाहिए, हाथ लगाने के लिए भी पाक होना चाहिए, इसको लिखने के लिए भी पाक होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया पाक साफ होकर के कुरान को हाथ लगाओ, जो आदमी नापाक हो गुस्सू न हो वो आदमी कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। हाँ जुबानी करना हो तो गैर उर्दू के भी जुबानी कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन हाथ लगाना हो तो फिर उर्दू के बगैर हाथ लगा के कुरान नहीं पढ़ सकते, उर्दू करना ही पड़ेगा। और अगर गुस्सा का तकाजा हो किसी को तो फिर जुबानी भी कुरान नहीं कर सकते। जैसे कि औरत को हैज का खून आया हो, मासिक का खून आया हो, तो उस खून के आने के जमाने में और जुबानी भी कुरान नहीं पढ़ सकती, और मर्द को औरत को गुसल का पता था तब भी जुबानी कुरान नहीं पढ़ सकती। हाँ अगर गुसल है लेकिन वुज़ू टूट गया है तो जुबानी कुरान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाथ लगाना हो तो वुज़ू करना है। ये हाथ लिखने के वास्ते तो कुरान लिखना है, अलहमद की सूरत लिखनी है, फलक लिखना है, फलाउदी नाम लिखना है, तो उसके लिए वुज़ू का होना जरूरी। किसी प्लेट के ऊपर कुरान लिखा हुआ, जैसे कि बात तांबे की प्लेटें आती है जिसमें सूरत लिखी होती है आती अलहमद फलाउदी फला फलाउदी नाम, तो उसको भी पकड़ना हो तो वुज़ू करना जरूरी है। बगैर वुज़ू के ऐसी प्लेट को भी पकड़ना जायज नहीं है। इसी तरीके से घर में दीवार पर लगाने के पोस्टर होते हैं, ये पोस्टर कभी कागज के होते हैं, कभी कपड़े के होते हैं, कभी कुत्ते के होते हैं, कभी फाइबर के होते हैं, कभी स्टील के ऊपर होते हैं, तो जिस पोस्टर के ऊपर कुरान की आयत देखिए तो उसको भी पकड़ने के लिए वुज़ू का होना जरूरी है। बगैर वुज़ू के उसको भी हाथ नहीं लगा सकते। और पुराने जमाने के अंदर जब इस्लामिक गवर्नमेंट होती थी, मुसलमानों की हुकूमत होती थी, तो सोने और चांदी के जो सिक्के लगते थे तो वो सिक्के पर वो आयत लिखते थे, तो उस जमाने के अंदर तो सिक्के पकड़ने के लिए भी वुज़ू करना जरूरी है, क्योंकि उन पर आयत लिखी हुई है। ये कुरान का इकराम है, कुरान का अदब और इकराम है। बहुत से लोग ये मोबाइल के अंदर कुरान को सेव करते हैं, तो अगर स्क्रीन के ऊपर कुरान चल रहा है, स्क्रीन पर कुरान चालू है, तो ऐसे चालू स्क्रीन पर कुरान हो तो उसको भी पकड़ने के लिए वुज़ू का होना जरूरी है। अगर स्क्रीन के ऊपर कुरान न हो बल्कि अंदर हो कुरान, और स्क्रीन के ऊपर उसको नंबर है या कोई मैसेज है कोई और चीज है, तो फिर उस वक्त पर वुज़ू का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब हमने कुरान वाली फाइल खोली है और स्क्रीन पर कुरान है, तो ऐसे वक्त अगर मोबाइल को पकड़ने के लिए भी कुरान का होना वुज़ू का होना जरूरी। इतनी पाकीज़ा और मुबारक और नूरानी किताब है, ये कुरान अल्लाह ताला ने ऐसा अजीब बनाया है कि इस कुरान के अंदर जो बातें अल्लाह ने बयान फरमाई एकदम पक्की, एकदम मजबूत और एकदम सही सही बातें अल्लाह ने बयान फरमाई। कुरान की एक एक सूरत 114 सूरतें कुरान के अंदर है, हर हर सूरत एक पूरी पूरी किताब और बुक जैसी है, और अल्लाह ताला ने पिछले जमाने में जितनी किताब भेजी, तौरात भेजी, इंजील भेजी, ज़बूर भेजी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सहीफे भेजे, वो तमाम किताबों का निचोड़ उसका खुलासा अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया। सारी आसमानी किताब का खुलासा निचोड़ अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, बल्कि कुरान की एक एक सूरत ऐसी है कि जो पिछली पूरे पूरी किताबों का खुलासा है। हम सूरह तौहीद को अभी कल आला पढ़ते हैं, तौहीद में क्या आता है, इन दो सूरते से जुमा की नमाज में भी पढ़ी जाती है, इस सूरत के अंदर जो बातें अल्लाह ने बयान फरमाई ये वो बात है जो हजरत इब्राहिम और मूसा अलैहि सलाम को जो अल्लाह ने किताब दी थी, उस पूरी किताब की बातें अल्लाह ने एक सूरत से बयान कर दी। अल्लाह बनाओ कुरान कितनी मजबूत, कितनी प्यारी, कितनी पाकीज़ा किताब होगी कि पिछली आसमानी किताबें जितनी किताब थी उसका खुलासा अल्लाह ने तेरे कुरान में बयान कर दिया। आगे फरमाते वमा तफरक अल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिना। अहले किताब यानी यहूद और नसारा में तफरीका यानी जुदाई हो गई, आपस से फिरके बन गए, قرآن کے آنے کے بعد، یعنی اس پاکیزہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کے اندر الگ الگ فرقے بن گئے. یہ عجیب بات اللہ نے اس میں بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اخیر میں دنیا میں تشریف لائے، پہلے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر قریب میں 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے حضور سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو جو مبارک کتاب دی تھی اس میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ دیکھو میرے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اللہ نے لکھ دیا تھا. یہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی کتاب میں پڑھ لیا کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں اور وہ نبی بہت برکت والے ہیں. تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا چالو کر دیا ہے، اللہ وہ آخری نبی کی ہم سے ملاقات کرواؤ، ہم ان سے ملاقات کریں، ان کے ساتھ مل کر کے دین کا کام کریں. پھر تورات انجیل میں لکھا تھا کہ وہ آخری نبی ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ آئیں گے. تو یہ یہودی اور عیسائی لوگ، ان کا وطن تو سیریا، ان کے شام فلسطین، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ کے بس گئے اور سینکڑوں سال مدینہ میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر کہ کب اللہ کے آخری نبی آئے اور ان کے ہاتھ پر ہم ایمان لائے. کبھی کبھی ان کی لڑائی اس زمانے میں کافروں کے ساتھ ہوئی، یہودیوں کی کافروں سے لڑائی، نصرانیوں کی عیسائیوں کی کافروں سے لڑائی. تو جب لڑائی ہوتی تھی تو وہ زمانے میں تو آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی، تو جب دو لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے تو یہ یہودی اور عیسائی لوگ کیا کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اے اللہ آپ کے جو آخری نبی آخری زمانے میں آنے والے ہیں ان کے طفیل کے اندر تو ہماری مدد کر دے اور ہم کو جیتا دے دشمنوں کے مقابلے میں، ہم کو کامیاب کر دے دشمنوں کے مقابلے میں. ابھی تو حضور دنیا میں آئے بھی نہیں، آنے سے بہت سال پہلے یہ یہود اور عیسائی لوگ آپ کے مبارک نام کے طفیل کے اندر اللہ کی مدد مانگتے کہ اللہ تو ہماری مدد کر دے، اور اللہ مدد بھی کرتے تھے اور وہ جیت بھی جاتے تھے. اور کبھی کبھی دعا کرنا بھول گئے اور ہار گئے، تو پھر ہارنے کے بعد یہ یہودی اور عیسائی لوگ ان کافروں مشرکوں کو یوں کہتے تھے کہ چلو آج ہم ہار گئے لیکن تھوڑی دیر انتظار کرو، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دنوں میں دنیا میں آنے والے ہیں، ان کو آ جانے دو. جب وہ آخری نبی آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے پاس لڑنے آئیں گے اور تم سے بدلہ لیں گے. آج ہم بھول سے ہار گئے لیکن تھوڑے دنوں میں اللہ کے نبی آئیں گے اور اس نبی کے ساتھ مل جل کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے اور مقابلہ کر کے ہماری ہار کا بدلہ لیں گے. ایسی باتیں یہود اور عیسائی لوگ بولا کرتے تھے. لیکن جس نبی کا انتظار کیا، جس نبی کے قبیل سے دعائیں مانگی، جس نبی کے انتظار میں مدینہ میں آ کے رہنے لگے، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اور مدینہ تشریف لائے تو سب کی وجہ سے یہودی اور عیسائی لوگ ایمان نہیں لائے. اور حسد کس چیز کے اوپر انکوائری، وہ فیملی اور خاندان بدل گیا کہ آج تک اللہ کے جتنے نبی آتے تھے وہ بنی اسرائیل کے خاندان میں آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بڑے بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. تو جتنے نبی آئے بعد میں وہ سب عیسیٰ اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين أولئك هم شر البرية. گزشتہ مجلس میں سورہ بینہ شروع ہوئی تھی, یعنی لم یکن الذین کفروا والی سورت, اس کی پانچ آیتیں مکمل ہوئی تھی. یہ چھٹے نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے, اور اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ تمام مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں. اس دنیا میں بہت سارے انسان ہیں, ان انسانوں میں سب سے برے اور گندے انسان کون تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کی پہچان ہم کو کرواتے ہیں تاکہ ایسی برائی سے ہم لوگ بچے. تو جن لوگوں نے اللہ تعالی کو نہیں مانا, اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا, اب یہ انکار والے کچھ تو وہ لوگ ہیں جو پہلے سے اللہ کو مانتے نہیں ہیں, جن کو ہم مشرک کہتے ہیں, کافر کہتے ہیں, جو پہلے ہی سے اللہ تعالی کو مانتے نہیں ہیں. لیکن کچھ ایسے کافر بھی ہے کہ جو پہلے اللہ کو مانتے تھے, پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا چالو کر دیا. یہ یہودی لوگ اور عیسائی لوگ, یہ کسی زمانے میں سچے دین پر تھے, اور اللہ تعالی کی مبارک کتاب تورات اور انجیل کو یہ لوگ پڑھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. اللہ تعالی نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر عطا فرمائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر عطا فرمائے. آسمان سے اللہ نے ان کو تورات اور انجیل جیسی مبارک کتاب عطا فرمائے, لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کفر کرنا چالو کر دیا. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, پھر بھی انہوں نے اللہ تعالی کے لیے دیوتا ماننا چالو کر دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے, عیسیٰ اللہ کے بیٹے. ایسے گندے اور غلط غلط عقیدے انہوں نے چالو کیے جس کی وجہ سے یہ لوگ کافر ہو. تو جو اللہ کو نہ مانے, اللہ کا انکار کرے, وہ سب سے بدترین انسان ہے, سب سے برے اور گندے انسان ہے. आगे अल्लाह सातवीं आयत में अच्छे इंसानों की पहचान कराते हैं कि अच्छे इंसान कौन थे। ये पहचान इसलिए कराई ताकि हम लोग भी उसको सुन करके अच्छे बन जावे। الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية। जो ईमान लाए और नेक काम वो लोग करते हैं वो अल्लाह की मखलूक के अंदर सबसे अच्छे लोग हैं। अब ये दो निशानी है अच्छे इंसान के, एक तो उसका ईमान पक्का, अल्लाह ताला को एक मानता हो, अल्लाह के नबियों को मानता हो, अल्लाह की किताबों को मानता हो, फरिश्तों को मानता हो, मरने के बाद जिंदा होने को मानता हो, उसका ईमान पक्का और मजबूत हो। देखो थोड़ी सी बात मैं आपको ईमान के लिए समझा दूं। एक अल्लाह ताला को हम लोग मानते हैं, एक अल्लाह ताला की हम लोग इबादत करते हैं, और अल्लाह के सिवा दूसरे किसी को हम नहीं मानते। देखो दो चीजें इसमें हो गई, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, मुस्बत भी है मनफी भी है। क्या? अल्लाह ताला को मानना, और साथ में दूसरी चीज ये भी मानना कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं। ये दोनों चीज मानना जरूरी है। आज दुनिया में हजारों इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह के साथ दूसरा मानते हैं। या आप गैर मुस्लिमों को जाकर पूछो, उसमें जो न्यूट्रल लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं अल्लाह भी है, राम भी है, रहीम भी है। अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह के साथ दूसरे को भी मानते हैं। ये ईमान चलता नहीं है। ईमान में तो जैसे हम अल्लाह को मानते हैं, ये भी जरूरी है कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं, ये भी जरूरी। ये मक्का के काफिर काफिर कैसे बने? वो अल्लाह को मानते थे, याद रखना। हुजूर के वे जितने थे, अबू जहल अबू लहब ये जितने भी थे, सब अल्लाह को मानते थे, याद रखना। इसीलिए तो अबू जहल जिस वक्त मारा गया, जिस लड़ाई में बदर की, उसके लिए जब वो मक्का से निकला है तो हदीस में आता है कि उसने काबा के पर्दे पकड़ के अल्लाह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह दो पार्टी की आज आमने सामने लड़ाई होने वाली है, एक मोहम्मद है क्योंकि वो हुजूर को मानता नहीं था, और उनके साथ मदीना के लोग आ रहे हैं और इधर हम मक्का से जा रहे हैं। ये दो पार्टी में जो हक पर है, सच्चाई पर है, उसको तो कामयाब कर देना, और जो बातिल है गलत है उसको नाकाम करना। काबा के पर्दे पकड़ के अबू जहल ने दुआ मांगी थी, क्या मालूम हुआ कि वो अल्लाह को मानते थे, कामते थे, हज भी करते थे, अरफात में भी जाते थे, मीना में भी जाते थे, मुजदलिफा में भी जाते थे, اللہ نے ان کے لیے ہی تو قرآن میں فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. یہ حضور سے بھی سینکڑوں برس پہلے سے حج کرتے تھے, یہ سب مکہ کے کافر لوگ, اور حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے, حاجیوں کو پانی پلانا, حاجیوں کو کھلانا, کعبۃ اللہ کی صفائی کرنا, کعبۃ اللہ کی چابی رکھنا, سارے کام یہ مکہ کے مشرکین کرتے تھے. ایک اللہ کو مانتے تھے اور دوسری طرف 360 بت کعبہ کے چاروں طرف بٹھا رکھے تھے, اس کو بھی مانتے تھے. ان کا سمجھنا ایسا تھا کہ اتنی بڑی دنیا اکیلا چلا نہیں سکتے, اللہ کے لیے کوئی ہیلپ کرنے والا چاہیے, مدد کرنے والا, آسسٹنٹ, کوئی ڈیپیوٹی چاہیے اللہ کے ساتھ, جو اللہ کا نائب ہوئے. پھر اللہ کا نائب کون, تو انہوں نے اپنی عقل سے سب نکی کر رکھے تھے, ان کے باپ دادوں نے, پر دادوں نے سب ڈیپیوٹی اللہ کے نکی کی کہ یہ بت ہے, یہ کھیتی اگانے کا کام میں مدد کرتا ہے اللہ کا, یہ بت ہے یہ برسات برسانے میں اللہ کی مدد کرتا ہے, یہ بت ہے یہ بچے دینے میں اللہ کو مدد کرتا ہے. سب ان لوگوں نے اللہ کے ڈیپیوٹی نائب اپنے طور پر سب نکی بھی کر رکھے تھے. تو اللہ کو مانتے تھے, حج بھی کرتے تھے, سب کچھ تھا, لیکن ساتھ میں دوسروں کو تھے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر اور مشرک کہا. تو صرف اللہ کو ماننا اتنا کافی نہیں, ساتھ میں یہ ماننا بھی ضروری کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں, یہ بھی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم الا اللہ تو بعد میں کہتے ہیں, پہلے تو لا الہ پڑھتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں, میں ساکشی بنتا ہوں, اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. پہلے لا الہ, اللہ کوئی دوسرا معبود نہیں, پھر الا اللہ. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے, ضروری کہ کوئی دوسرا اللہ کا مدد کرنے والا نہیں, اللہ کے ساتھ میں نہیں. یہ پہلی چیز ہو گئی اللہ کے بارے میں, اس کو برابر ذہن میں رکھنا. دوسری چیز ہمارے ایمان میں بہت امپورٹنٹ چیز کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں کو ہم مانیں, یہ بھی ضروری ہے. حضور کو بھی ماننا اور اللہ کے تمام نبیوں کو ماننا, کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے, نوح علیہ السلام بھی, ادریس علیہ السلام بھی, شیش علیہ السلام بھی, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, 25 نبیوں کے نام قرآن میں آئے ہیں تقریبا, اور باقی ایک حدیث میں آیا کہ 224,000 اللہ کے نبی تھے. دوسری حدیث میں ہے کہ 124,000 اللہ کے نبی تھے, 224,000 بھی حدیث میں اور 124,000 بھی حدیث میں ہے. تو اپنے کو یہ ماننے کا کہ 124,000 یا 224,000 تقریباً آسرے کم و بیش ان سب نبیوں کو جن کو اللہ نے بھیجا ان کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں, ये मानना भी जरूरी, जैसे हुजूर को मानते सारे सब के सब नबियों को मानना हमारे लिए जरूरी। और ये 1,24,000 या 2,24,000 में से 313 रसूल थे, बाकी सब नबी थे। रसूल और नबी में भी फर्क है। रसूल का मीनिंग क्या है? जिनको अल्लाह ताला कोई नई किताब दे रहे आसमान पर से, जैसे कुरान, जैसे तौरात किताब अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को दी, इंजील किताब ईसा अलैहि सलाम को दी, जबूर किताब दाऊद अलैहि सलाम को दी, इब्राहिम अलैहि सलाम को सहीफे दिए, शीश अलैहि सलाम को सहीफे दिए, तो जिस नबी को अल्लाह ने नई किताब दी, नया कानून दिया, नई शरीयत दी, उसको रसूल कहते हैं। और जिसको नई किताब, नई शरीयत, नया कानून नहीं मिला, ऐसों को नबी कहा जाता है। नबी जनरल का, और उसमें स्पेशियल रसूल। रसूल का दर्जा ऊंचा। 313 रसूल थे और बाकी सब अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर थे। ये भी ईमान के अंदर मानना जरूरी है। फिर हम पढ़ते हैं, अमल करते हैं कुरान पे, ये अल्लाह की किताब, इसको पढ़ते हैं, इस पर अमल करने का ये हमारे लिए कानून है, ये हमारे लिए लॉ है, ये कायदे हैं हमारे लिए अमल करने के। लेकिन हमको तकरीबन 104 किताब अल्लाह ने दुनिया में उतारी, वो सब किताब के ऊपर ईमान लाना जरूरी हमारे लिए। 104 किताबें अल्लाह ने दुनिया में भेजी है तकरीबन, इसमें चार बड़ी बड़ी किताब, एक कुरान, एक तौरात, एक जबूर, एक इंजील, ये चार बड़ी बड़ी किताब, बाकी 100 छोटी छोटी किताबें अल्लाह ने भेजी थी। तो इस जमाने में तौरात मिलती है, इंजील मिलती है, अगर के उसने सब हेरा फेरी कर दी ईसाई लोगों ने, यहूदियों ने, लेकिन मिलती है। तो ये भी मानना जरूरी कि कुरान भी सच्ची किताब और अल्लाह ने जिस जमाने में जो किताब उतारी थी वो सब की सब सच्ची किताब, ये भी ईमान में जरूरी, वरना ईमान अधूरा रहेगा, समझ लो। फिर फरिश्तों का मसला है कि अल्लाह ने बहुत सारे फरिश्ते बनाए, जैसे इंसान है, जैसे जिन्नात है, ऐसे फरिश्ते, तीन बड़ी बड़ी मखलूक अल्लाह की। अल्लाह ने पहले फरिश्तों को पैदा किया, फिर जिन्नात को पैदा किया, और फिर आखिर में इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। और फरिश्ते कितने हैं वो किसी को मालूम नहीं। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्लाहु, अल्लाह का लश्कर फरिश्तों का कितना बड़ा किसी को खबर नहीं। अपने को ईमान ये लाने का, अल्लाह के जितने भी फरिश्ते हैं उन सब फरिश्तों को हम मानते हैं, सब फरिश्तों पर हमारा ईमान। उसमें चार बड़े बड़े फरिश्ते, हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफील और हजरत इजराइल, चार बड़े फरिश्ते। हजरत जिब्राइल का काम वो अल्लाह के पैगंबर अल्लाह की किताब लेके आते थे, अल्लाह का मैसेज, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का संदेशा लेकर के आते थे, ये जिब्राइल का काम है। और अभी भी जिब्राइल आते हैं शबे कदर में, शबे कदर आती है रमजान में, तो जिब्राइल दुनिया में आते हैं और आके इबादत करने वालों की मुलाकात करते हैं। जिसको इबादत में रोना आवे, शबे कदर में इबादत करते करते रोना आवे तो समझ जाने का कि जिब्रील अमीन ने उसके साथ मुलाकात की। ये लिखा है किताबों में, निशानी लिखी है। تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ। जिब्रील उतर के आते हैं एक कॉल के मुताबिक, और जितने इबादत करते हैं शबे कदर में दुआ मांग रहे सबकी मुलाकात करते हैं, और जिब्रील की मुलाकात की निशानी ये कि आदमी को रोना आवे, अल्लाह का डर आवे। समझो जिब्रील ने मुलाकात की। दूसरे फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है, वो तो मुंह में वो सुर लेके खड़े हैं, एक बजाने का आला है, बजाने की चीज है, वो मुंह में लेके खड़े हैं। उनके कान अल्लाह के ऑर्डर की तरफ है कि अल्लाह कब ऑर्डर देवे ने मैं फूक दू, और वो फूकेंगे और दुनिया कयामत आ जाएगी पूरी दुनिया में। ये हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है जो सुर फूकने का काम करेंगे कयामत के दिन, और तीन मरतबा सुर फूकेंगे। पहला सुर फूकेंगे पूरी दुनिया के इंसान बेहोश हो जाएंगे। सूर फूकेंगे तो जमीन आसमान में जितनी भी मखलूक है इंसान है सब बेहोश होकर जमीन में गिर जाएंगे। फिर दूसरा सूर फूकेंगे खाएंगे, पहाड़ टूटेंगे, आसमान टूटेंगे, तारे टूटेंगे, जमीनें टूटेगी, जानवर मरेंगे, सब खत्म। और तीसरा सूर भूकेंगे तो सब जिंदा होकर कयामत के मैदान की तरफ चलेंगे। तीन मरतबा सूर भूकेंगे हजरत इसराफील। और तीसरे फरिश्ते का नाम है मीकाईल। ये मीकाईल बरसात बरसाते हैं, अल्लाह ने उनको काम सौंपा है, बादलों को चलाओ, बरसात बरसाओ, खेती उगवाओ, ये पूरा काम अल्लाह ने उनको सौंपा है मीकाईल अलैहिस्सलाम को। वो अल्लाह के हुक्म से काम करते हैं। और चौथे हैं इजराइल, मलिकुल मौत जिनको कहते हैं, रूह लेने वाले फरिश्ते जो रूह लाती है, बड़े फरिश्ते। ये चार बड़े, उसके अलावा आठ और बड़े फरिश्ते हैं जो बहुत ऊंचा दर्जा रखते हैं। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया। कयामत के दिन ये आठ फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श को लेकर कयामत के मैदान में आएंगे, खुदा के तख्त को लेकर। ये भी बहुत आलीशान फरिश्ते, इनको करूबी जमात कहते हैं, बड़े बड़े फरिश्ते हैं ये। और फिर बाकी जनरल फरिश्ते, कुछ और दर्जे वाले फरिश्ते। अल्लाह पाक की शान, ये इतने बड़े बड़े फरिश्ते, अल्लाह की किताब लाने वाले, बारिश बरसाने का काम करने वाले, खुदा के तख्त के पास बैठने वाले, लेकिन पक्की और सच्ची बात यह है कि जो टॉप क्वालिटी के हैं, पक्के ईमान वाले, नेक आमाल वाले, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, ये इन तमाम फरिश्तों से भी ज्यादा अफजल है। फरिश्तों का नंबर तो सेकंड नंबर आता है, पहला नंबर टॉप क्वालिटी के इंसानों का आता है। और जो जनरल नेक आदमी है, नेक नमाजी साफ दिल वाले, वो भी जनरल फरिश्तों से ये आम इंसान अच्छे। जनरल फरिश्तों के मुकाबले में ये आम इंसान, ईमान वाले, नेक काम करने वाले, ये जनरल फरिश्तों से बेहतर है। अल्लाह ने इंसान को इतना ऊंचा मकाम अता करना है। तो ये ईमान है हमारा। फिर मरने के बाद की जिंदगी, कब्र की जिंदगी, कयामत की जिंदगी पर ईमान भी जरूरी। इसलिए अपने मकतब में बच्चों को याद कराते हैं ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت। मेरा ईमान अल्लाह पर, कयामत के दिन पर, फरिश्तों पर, अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह की किताबों पर, मरने के बाद जिंदा होने पर, और जो कुछ दुनिया में होता है अच्छा बुरा सब अल्लाह की यहाँ तकदीर से होता है। ये ईमान तो हर एक के लिए जरूरी। जो ईमान लाए, जो नेक काम करे, वो सबसे अच्छा इंसान है, टॉप क्वालिटी का। फिर वो झोपड़े में रहता हो तो भी वो सबसे अच्छा इंसान, तो खाने के लिए रोटी नहीं मिलती हो तो भी वो सबसे अच्छा इंसान, क्योंकि वो अल्लाह की नजर में अच्छा है। अच्छा वो जिसको अल्लाह अच्छा दे रहे, बाकी दुनिया के लोग अच्छा कहे उससे कुछ होता होता नहीं है। और अल्लाह अच्छा कौन? जिसका ईमान पक्का और जो नेक अमल वाला, वो अच्छा। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। अल्लाह ऐसे नेक लोगों को अपने पास, अल्लाह के यहां, अल्लाह रब के पास जन्नत है, जिस जन्नत में हमेशा रहेंगे। उस जन्नत के नीचे से नहरें चलती है पानी की, और उस जन्नत में हमेशा ये लोग रहेंगे। ऐसे नेक काम करने वालों को अल्लाह मरते ही जन्नत अता करे। और अपने पास, सुभान अल्लाह, देखो किसी को तुम दो रोटी और दो कबाब खिलाओ घर के दरवाजे पर, उसको दे दिया ले ले जा। और दूसरा क्या है, घर में बुलाया, एयर कंडीशन चालू किया, दस्तरखान बिछाया, हाथ धुलाए, फिर बिठा के निकाल के खिलाया, आप कितने खुश होते, वाह वाह मेरा कितना रिस्पेक्ट करते, अदब करते, इकराम करते, घर में बुला के बिठा के इतनी इज्जत से खिलाते। तो अल्लाह चाहते तो कहते जाओ वो नहीं जन्नत, लेकिन अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं, इन द रब्बिहिम मेरे पास जन्नत है, उस मेरे पास वाली जन्नत में मैं अपने बंदों को रखूंगा, नेक काम करने वाले। और दुनिया में अभिषनों में निकले हुए, कोई यहाँ कोई वहां कोई वहां कोई यहाँ, था चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा। क्या हुआ, वैकेशन पूरे, पैसे खलास, घर वापिस आ गए, फाइव स्टार होटल भी खाली कर दी और जो रिसोर्ट बुक कराया था वो भी, और जेब भी खाली। चार दिन के बाद चेकआउट टाउन से निकल के आ जाने का, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ क्या होगा, हमेशा रहने का। कभी अल्लाह जन्नत से बाहर नहीं निकालेंगे, हमेशा हमें रहो या मजे से रहो, निकलने का ही नहीं, निकालेंगे भी नहीं, निकलने का नहीं, हमेशा। और वो जन्नत भी कैसी, दुनिया के अंदर तो अच्छे अच्छे गार्डनों में, बागीचों में भी बाज मरतबा दरख्त सूख जाते हैं, झाड़ सूख जाते हैं, पानी सूख जाता है। आप जाएंगे बाग हिल स्टेशन के ऊपर, अरे कुछ हरा हरा ग्रीन ग्रीन दिखता नहीं, तो क्या तुम ऑफ सीजन में आए, अभी सीजन नहीं है, बारिश के बाद आना तो यहाँ बहुत हरियाली हरियाली होती है। अभी तो उनाड़ा चलता है, अभी का यहाँ सब हरा हरा भी, अल्लाह ताला की यहाँ उनाड़ा सियाड़ा चौमासा कुछ नहीं, वहाँ बारह माह पूरे बारह महीने वहाँ ग्रीन ग्रीन हरियाली पूरा हमेशा। वहाँ अल्लाह ने जन्नत के बीच में नहर चलाई है पानी की, उससे वहां के बगीचे हमेशा ग्रीन हरे ताजे रहते हैं। और उसका सीन सीनरी, उसका मंजर, वो भी आदमी देखे तो हैरान रह जाए। जब मुगलों की हुकूमत थी ना हिंदुस्तान में, तो उन्होंने लाल किले में जन्नत का नक्शा बनाने की ट्राई की थी, और दीवाने आम दीवाने खास उनके रूम जो सब बनाए लाल किले में है अभी जाके देख लो, तो वहां उन्होंने नीचे नहरें बनाई, पूरे महल में नहरें चलती थी, बेडरूम में भी नहर और बैठक रूम नहर, छोटी 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 पानी की, बहुत खूबसूरत संगमरमर की बनी हुई। लेकिन आज वहां चामा चीड़िए वहां बैठते हैं, पानी भी सूख गया, चामा चीड़िए अपने जो है वहां माड़े बनाते हैं, वहां कचरा साफ करने वाला कोई नहीं। एक नहर कितने बड़े खर्चे से इतनी बड़ी हुकूमत और सरकार ने बनाई, यहाँ तो 5 बरस कोई कुर्सी पे आवे तो क्या कहना। उन्होंने 500 बरस हिंदुस्तान पे हुकूमत चलाई मुगलों ने, और उन्होंने एक नहर बना सके, और वो भी कैसी, थोड़े दिनों में सूख गई, आज सिर्फ उसके खंडर रह गए हैं। अल्लाह एक एक जन्नती को जन्नत में ऐसी नहर देंगे जिसमें हमेशा पानी बहेगा, कभी वो पानी खत्म नहीं होगा, और सीन भी बहुत अच्छा लगता होगा। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह उन नेक लोगों से राजी और ये नेक लोग अल्लाह से राजी। कहते हैं कि जन्नत में एक दिन अल्लाह ताला जन्नतियों को सवाल करेंगे, सब जन्नती लोग अपने बंगले में हैं, बागीचों में हैं, हुरों के साथ हैं, मौज मजे कर रहे हैं, मस्ती में हैं। एक दिन अल्लाह ताला जन्नतियों को सवाल करेंगे, या अहलल जन्ना, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पूछेंगे जन्नतियों को, या अहलल जन्ना, ए जन्नतियों, तो अल्लाह की आवाज, तो सब जन्नती लोग फौरन ध्यान से आ जाएंगे और कहेंगे, लब्बैक रब्बना व सअदैक वल खैर कुल्लहु बियदैक, ए अल्लाह हाजिर है हम हाजिर है, सारी भलाई आपके हाथ में है, ए अल्लाह बताइए क्या हुक्म है। सब लब्बैक पढ़ के जन्नती लोग अल्लाह की तरफ हो जाएंगे, लब्बैक रब्बना व सअदैक वल कुल्लहु बियदैक, सारी भलाई आपके हाथ में, बोलो क्या फरमाते हो। अल्लाह ताला पूछेंगे, हल रदी तुम, मेरे बंदो तुम राजी हो मेरी जन्नत में, खुश हो मेरी जन्नत में, तो बंदे कहेंगे कि अल्लाह यहां नाराजगी की कौन सी बात है, एक से एक खाने की आइटम, एक से एक बंगले, एक से एक नहरे, एक से एक हो रही है, कौन सी कमी के हम नाराज रहे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं इससे भी बड़ी एक नेमत तुमको आज देना चाहता हूं, जिसके सामने ये जन्नत की सारी नेमत जो है कुछ नहीं, ऐसी नेमत आज मैं तुमको देना चाहता हूं। तो सब जन्नती ध्यान से मुतवज्जे हो रहे हैं, कौन सी नेमत आज मिलेगी। अल्लाह ताला ऐलान करेंगे, ए मेरे बंदो जाओ, मैं तुमसे राजी हूं, अब मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। अल्लाह जिस दिन जन्नतियों को अपने राजी होने का सर्टिफिकेट देंगे, वो जन्नतियों की ईद का दिन होगा, जन्नत में वो ईद का दिन कहा जाएगा। अब मजे में, अच्छा अल्लाह राजी हो गए हमसे, और कभी अब हमसे नाराज नहीं होंगे अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। वरदू अनहु, और जब अल्लाह ताला राजी, तो बंदे जो मांगेंगे जो चाहेंगे, बंदों की जो मुराद होगी, जो तमन्ना होगी, आरजू होगी, अल्लाह सब पूरी करेंगे, कोई ना कसर नहीं होगी। हर मुराद पूरी, हर तमन्ना पूरी, हर आरजू पूरी, हर चाहत पूरी, कोई कमी नहीं अल्लाह की तरफ से। अल्लाह फरमाते हैं, ऐसी जन्नत में किसको दूंगा, लिमन खशिया रब्बा, जो अल्लाह से डरता हो, अल्लाह को बड़ा मान के अल्लाह से डरे, लोग सांप बिच्छू से भी डरते हैं, लेकिन सांप बिच्छू समझ के थोड़ा ही डरता है। लोग चोर गुंडों से भी डरते हैं, लेकिन उनको कोई बड़ा समझ के थोड़ा ही डरता है। अल्लाह से डरना है कि अल्लाह हमारे बड़े हैं, अल्लाह की अजमत, अल्लाह का जलाल, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह को अपना बड़ा मान के अल्लाह से डरे। ऐसी खशियत और डरने वालों को अल्लाह ताला अपनी ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह हम सबको अपनी खशियत अता फरमाए, अल्लाह अपनी जन्नत से हमें नवाजे और अल्लाह हमसे राजी हो जाए हमेशा हमेशा, और हमें अपने से अल्लाह राजी कर ले। अल्लाह ऐसी पाकीज़ा जिंदगी हम सबको नसीब फरमाए।